स्पोर्ट्स की स्टोरी नजर आ रही होती, लेकिन चूंकि आमिर ने पेज रिफ्रेश नहीं किया इसलिए ये कल की स्टोरी आपको नजर आ रही है। बहरहाल आप आमिर जैसे काम ना करें, आप सोए ना, आप जाग जाएं और आप पेज को रिफ्रेश करें तो आपको आज का जो मैच है उसके वहां पे सारी स्टोरी नजर आएगी, ठीक है जी। और राइट साइड पे आपको नजर आएंगे हमारे सारे जो हैं क्या कह सकते हैं उनको, हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे, ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो हम कुछ स्पॉन्सर्स के आपको पैगामात भी देते हैं, और पैगामात ये हैं जी कि अगर आपको सपनों का घर चाहिए तो जस्टिन जेम्स जी जो हैं उनको कांटेक्ट करें। जस्टिन जेम्स जी का नंबर है 6476886931। कैसा भी आपको चाहिए घर, टू लेवल कॉन्डो, सेमी डिटैच, डिटैच्ड होम, टाउन हॉल, कैसा भी आपको चाहिए तो आपको वो टाउन हाउस जो है वो आपको दिला सकते हैं। और जनाब दो जो प्रोजेक्ट्स बड़े जबरदस्त जो टीम हिना जो है आजकल कर रहे हैं एडवर्टाइज हमारे साथ, वो है एक न्यू प्रोजेक्ट है ब्रैम्पटन के अंदर, स्टैक टाउन्स है, इनकी स्टार्टिंग प्राइस है 650,000 और इसका डिपॉजिट आपने देना है 20,000 साइनिंग के ऊपर। इसकी क्लोजिंग जो है 2023 में है, असाइनमेंट क्लॉज जो है वो अवेलेबल है, लेवीज कैप्ड है। और दूसरा प्रोजेक्ट है इन बर्लिंगटन, तो बर्लिंगटन के अंदर जो है कॉन्डो आ रहे हैं, इनका नाम है बूसले और इनकी स्टार्टिंग प्राइस है 450,000, डिपॉजिट $5,000 पे है विद साइनिंग, क्लोजिंग जो है 2024 में है, असाइनमेंट क्लॉज यहां पे भी अवेलेबल है, लेवीज यहां पे भी कैप्ड है। तो टीम हिना को फोन करें फॉर एट 416-993-6600 पे। और जनाब रिमिटली जबरदस्त इनकी सर्विस है, 15 मिनट्स में अपने प्यारों को आपके जो भी कोई उनका ओकेजन है, बर्थडे है, वेडिंग है, उसके ऊपर आप पैसे भेज सकते हैं एंड यू कैन फील क्लोजर टू देम। आप उनके डिटेल्स डालें, पैसे डालें और बस उनको सेंड करें तो 15 मिनट्स में उनको मिलेंगे और आपको भी नोटिफिकेशन आएगा। और आप जो है रिमिटली की इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो ऐप डाउनलोड कर लें और आपका मैसेज वहां पहुंचेगा। तो ये दिस मैसेज इज स्पॉन्सर्ड बाय फ्रेंड्स एट रिमिटली।
और अगर आपको कहीं पर सब स्टैटिक्स नहीं दे रहा है, मीन के थोड़ा सा अगर गड़बड़ेशन है तो गड़बड़ेशन क्या गड़बड़ेशन है, अगर गड़बड़ेशन है सुनने में तो भाई आप ऐसा करें कि हमारा फोन नंबर डायल कर लें आप 6478724900 पे आप डायल करें और आपको प्योर 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 विदाउट एनी गड़बड़ेशन आप हमारा रेडियो प्रोग्राम सुन सकते हैं। जी साहब वेलकम बैक अगेन एंड अभी चलते हैं आपको शाज़ मलिक की जानिब एंड पूरी की पूरी खबरें जी फरमाइए
जी। अच्छा माजिद भाई, सबसे तो बड़ी खबर यही है, ये जाहिर है कि ट्रूडो साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वैसे तो खबरें उनसे शुरू होनी चाहिए लेकिन चूंकि हम जैसे गरीबों को ये इफेक्ट करती हैं तो इसलिए इसे शुरू करेंगे। जो आज फोर्ड साहब ने अनाउंसमेंट की है $15 per hour 1st of January से वो लोग करेंगे और इस वक्त जो है 14.35 per hour है। अच्छा अब ये अनाउंसमेंट जो है ठीक है, कभी कभी कहते हैं कि जो है वो सूनर देन लेटर जो है वो कर देनी चाहिए, लेकिन ये उन्होंने कुछ ज्यादा ही लेट कर दिया है। क्योंकि क्या हुआ था, जब लिबरल्स ने ये अनाउंस किया था ना कि 2019 में ये हम करेंगे $15 per hour, तो उस वक्त जब फोर्ड साहब जीत कर आ गए थे तो उन्होंने बहुत इसके खिलाफ बात की थी। उन्होंने कहा था नहीं नहीं, ये जो उन्होंने कार्बन टैक्स लगाया है उसको हम खत्म कर देंगे, तो ये जो वेजेस इस वक्त 14.35 हैं ये बिल्कुल ठीक रहेंगी और यही चलती रहेंगी और यही चलनी चाहिए क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस को बड़ा नुकसान है। इंडिपेंडेंट जब सर्वे आए थे तो इंडिपेंडेंट सर्वेज ने कहा कि फोर्ड साहब ने मिस्टेक इधर कर गए हैं, वो इसलिए क्योंकि $15 per hour करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब उन्होंने इन्फ्लेशन का रेट देखा तो उन्होंने कहा जी इन्फ्लेशन 4-5% ऊपर जा रही है, तो ये इनको पहले ही कर लेना चाहिए था। जैसे कि यहां पे जो थी डीना लैड, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्कर्स एक्शन सेंटर की हैं, वो कहती हैं कि अब जाके कहीं पे जो है फोर्ड साहब को ये समझ में आई है कि ही मेड अ मिस्टेक।
मगर यू गॉट अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर आर 7 मंथ्स टू गो इन द इलेक्शन,
हां जी,
तो इलेक्शन के ऑफ कोर्स यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, कोई वहां पर नेगेटिव पॉइंट छोड़ना नहीं चाहते,
छोड़ना नहीं चाहते। तो वो कहते हैं जी कि मैं आज, उन्होंने बहरहाल अनाउंसमेंट कर दिया कि नेक्स्ट ईयर से ये करेंगे। तो आज इनके साथ जो थे लेबर मिनिस्टर मॉन्टी मैकनॉटन भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर जो है पीटर क्या नाम है इनका, बड़ा मुश्किल है, बेथलन सेल्वी जो थे वो इनके साथ थे, तो ये उनके साथ ये इनको लेकर के। अच्छा, अब एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये वही वाली आप वाली बात कि अब तो 7 महीने रह गए हैं, तो ये तो जिस वक्त 2018 में आए थे तो उस वक्त ही अगर ये कर देते तो ऑन्टेरियो के अंदर 76,000 जो वर्कर्स थे उनको फायदा हो सकता था,
760,000
लोगों को फायदा हो सकता था। तो अब जो है लोगों की हालत इतनी पतली हो गई है, तो आज की जो इनकी स्पीच थी कि मैं हमेशा वर्कर्स के साथ खड़ा रहता हूं और मैं उनकी मुश्किलें समझ सकता हूं और मैं करता हूं, तो वो कहते हैं आज की स्पीच का कुछ खास लोगों पे इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि एक तो पेंडेमिक में आगे, और वो कहते हैं जी कि मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूं जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हमें नहीं करने देती है, क्योंकि जिस वक्त इन्होंने कहा था कि हम ये खत्म कर रहे हैं सारे ये जो कार्बन टैक्स वगैरह के वो हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कहा था कि नहीं, हम पूरे कैनेडा के अंदर इसको जो है एनफोर्स कर रहे हैं, जो कि आज की भी उनकी स्पीच थी वहां पर ट्रूडो साहब की, वो कहते हैं कि नहीं हमको काम ज्यादा करने की जरूरत है। तो वो कह रहे हैं
आज देखिए उसकी वजह से नॉट ओनली कार्बन में कमी आ रही है, मगर आज का जो मेन टॉपिक था वहां पर उस कॉन्फ्रेंस में वो कार्बन था, और उसमें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर वेरी प्राउडली उन्होंने कहा कि देखिए मैंने जो किया ना वो आप तमाम लोग ऐसा ही करें अपने मुल्कों में
करें। तो वो कह रहे हैं कि आज की जो फिर ये जो स्पीच इन्होंने की है ना, मिल्टन में थे आज ये, तो वो कहते हैं कि कुछ फोर्ड साहब की स्पीच का लोगों को कुछ इतना मतलब प्यार से नहीं देखा गया।
और दूसरा जो उन्होंने प्रॉमिस किया था ना एट द इलेक्शन टाइम वो था 10 सेंट्स पर लीटर
ऑयल
गैस
ऑयल में
कम
करने के लिए। हाँ जी हाँ जी, तो वो अच्छा, अब उसके लिए भी अब ये क्या हुआ कि आज इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की, इन्होंने कहा जी कि मैं जब आया था तो मैं चाहता था कि मैं 10 सेंट ऑयल में कमी लेकर आऊं, लेकिन क्या हुआ था वही वाली बात फिर उन्होंने दोहरा दी कि हम तो कम करना चाहते थे लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो हमें को नहीं करने दे रही थी। और फिर उन्होंने वो बात की कि हम कहते थे कि अगर इसमें वो कार्बन टैक्स ना लगाया जाए लोगों की पॉकेट्स में ज्यादा पैसे होंगे, तो ये अगर पेट्रोल की प्राइस जो है थोड़ी देर में भी नीचे आएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन ये अब लोग कह रहे हैं कि ये अब ये भी नहीं कर सके क्योंकि ऑयल की प्राइसेस तो इंटरनेशनली हाई हैं। ट्रंप साहब ने फोर्ड साहब ने आज फिर से जो है पूरे का पूरा मलबा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया है। उन्होंने कहा जी हम तो करना चाहते हैं लेकिन, और हम तो इस प्रॉमिस को आगे लेके जाना चाहते हैं, बट आई जस्ट विश दैट द फेडरल गवर्नमेंट ऑल्सो फॉल्स इन लाइन, कि वो भी हमारा साथ दे इस चीज के ऊपर।
देखिए जो गैस की प्राइसेस है ना उसमें 10 सेंट्स फेडरल एक्साइज टैक्स लगता है, 8.8 सेंट्स पर लीटर जो है वो फेडरल कार्बन टैक्स लगता है, और फिर 14.7 सेंट्स जो है पर लीटर ऑन्टेरियो फ्यूल टैक्स है जो ऑन्टेरियो को मिलता है, एंड 13 सेंट्स HST जो है वो भी मिलता है।
तो वो चाहते हैं कि ये इनमें से कुछ चीजें जो है जैसे कि वो कार्बन टैक्स लगाया हुआ है वो इस पे कट कर दिया जाए या कुछ ऐसे, तो बहरहाल ये अब 10 सेंट ये कर सकेंगे नहीं, मगर वो कहते हैं उन्होंने कहा है कि मैंने जो अपना प्रॉमिस किया था उसके ऊपर मैं अभी भी खड़ा हुआ हूं, अब उसको अचीव कर सकते हैं कि नहीं ये तो मुश्किल है, क्योंकि टोरंटो के कुछ एरियाज में अपने अभी पहले कुछ दिन पहले ही बताया था कि
1.50 सेकेंड ना उसको $1.50
हाँ $1.50 पर लीटर मिल रहा है, तो विच इज टू मच। तो अब ये दोनों बात
एक्सपर्ट जो है उनका कहना है कि साल के नॉट दिस ईयर एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर ये $2 तक पहुंच जा सकता है,
पहुंच जाएगा। हाँ जी, जिस तरह से ऊपर जा रही है ऑयल की प्राइसेस। अच्छा जनाब, ट्रांसपोर्ट कनाडा ने आज जो है वो कहा है कि हम फर्दर ईज कर रहे हैं ट्रैवल की जो वो है रिस्ट्रिक्शंस जो है, और जो फुली वैक्सीनेटेड अब कैनेडियंस हैं वो अब सफर कर सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रैवल में भी, ये क्योंकि वो कहते हैं जी ये जो हमने स्पेशली पासपोर्ट जो अब जारी कर दिए हैं तो उसके लिए बड़ा अच्छा। उमर अल गबरा जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, आज उन्होंने ये अनाउंसमेंट्स की हैं और उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट स्टेप्स अब ये हैं कि हम इसको एक्सपैंड करें और ज्यादा कैनेडियन एयरपोर्ट्स पे, लेकिन आज के जो ये अलाउ कर रहे हैं नवंबर 30 से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अब आएंगी कनाडा में वो अब ज्यादा जगहों के ऊपर जो है लैंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स कर सकेंगी, सिर्फ ये जो मेन जो एयरपोर्ट्स थे उसमें नहीं। तो जो आज उन्होंने एक्सपैंड किए हैं कुछ नेम्स और एड किए हैं इसमें वो हैं सेंट जोन्स इंटरनेशनल, जॉन सी मुनरो हैमिल्टन इंटरनेशनल सस्कैचुअन, जॉन जी डिफेन बेकर इंटरनेशनल, वाटरलू इंटरनेशनल, रेजाइना, केलोना, एबट्सफोर्ड, विक्टोरिया इंटरनेशनल, ये सारे वो हैं। और वो कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में और हम इसको जो है रिलैक्स करते चले जाएंगे, तो ये आज जो है ये अच्छी खबर है। लेकिन वो कहते हैं कि जाहिर है कि ये हम इसलिए कर सके हैं कि अब लोगों के पास जो है पासपोर्ट्स हैं, वैक्सीनेशन पासपोर्ट्स हैं दिखाने के लिए, तो हमारा उसके अंदर भी ट्रस्ट है और लोगों का भी है कि जो
कॉन्फिडेंस
है कि जो अब लोग आएंगे वो एटलीस्ट जो है दूसरों को वो नहीं करेंगे। अच्छा जी, ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो अब फोर्ड साहब को उसको ट्रूडो साहब को कह रही हैं कि आपका ये जो मुल्क में इतना बेड़ा गर्क चल रहा है ना, उसकी वजह यह है कि आप सप्लाई चेन को जो है वो आप नहीं कर सक रहे हैं मॉनिटर, और उसको संभाला नहीं दे सक रहे हैं। तो आज जो अपोजिशन के जो पार्टी के लीडर्स थे, जैसे कंजर्वेटिव क्रिकेट थे एड फास्ट, उन्होंने आज बड़ा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा जी कि लिबरल गवर्नमेंट जो है उसको जो है ट्रेड की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और ट्रेड कॉरिडोर्स जो हैं और ये जो चीजों की मूवमेंट्स हैं थ्रू आउट द कंट्री एंड इवन आउट ऑफ द कंट्री, इनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है ताकि नॉर्थ अमेरिका में चीजें जो हैं वो इधर भी आ सकें और हमारी भी वहां पर जा सकें। इसके अलावा जो एनडीपी के जो क्रिटिक थे डैनियल ब्लेकी, उन्होंने भी यही कहा है कि देर शुड बी अ पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, और जिस वक्त तक ये पार्टनरशिप नहीं होगी और जब तक इनके बीच में ट्रस्ट नहीं होगा तो ये चीजें जो है कंज्यूमर गुड्स और ये सारी चीजें जो है इनका जो ये ट्रेडिंग बॉटल नेक है ये चलता रहेगा ऐसे ही, तो इनको ईज करने की जरूरत है। तो यानी कि आज जो है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर काफी जम के हमले किए इन्होंने ऑपोजिशन ने, और इन्होंने कहा कि भाई ये जो हम बार बार इसीलिए कहते थे कि चूंकि सप्लाई चेन जो है अभी अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आपने ये जो ऑलरेडी बेनिफिट्स कट कर दिए हैं तो वो आपको नहीं करने चाहिए थे फेडरल गवर्नमेंट को, कहा क्योंकि लोगों को जो है चीजें ही नहीं अभी तक मिल रही हैं। तो
और अगर उसको बेनिफिट्स को कंटिन्यू रखेंगे तो कहेंगे ये पैसे कहां से लाएंगे आप?
हाँ, कहां से लाएंगे? यस, यही तो बात है, ऑपोजिशन का तो यही तो काम है भाई पहले वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हो रही इसलिए कि वैक्सीन नहीं आ रही हैं।
हाँ।
अब इतनी क्यों ज्यादा वैक्सीन मंगवा ली है?
हाँ,
अब जो है ये उसके ऊपर ये अच्छा अब जल्दी लगाओ क्योंकि ये खराब हो रही है।
हाँ।
भाई हर चीज का मुद्दा आपके पास है,
जो खराब हो रही है तो उसको आप बाहर क्यों दे रहे हो जल्दी से, अपने पास रखो,
अपने पास ही रखो, खराब होने दो, चलने दो ऐसे। अच्छा जनाब, इलेक्शंस कनाडा जो है उसने लेजर वालों को एक जो है वो सर्वे के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि ये जो अचानक से इलेक्शंस आ गए थे इसमें क्या कॉन्स्पिरेसीज चल रही थी बीच में ना, लोग क्या समझ रहे थे, लोगों को क्या लग रहा था कि ये क्यों हो रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगस्त के अंदर अचानक से इन्होंने कह दिया, जब फोर्थ वेव थी कंट्री के अंदर कनाडा में तो ट्रूडो साहब ने एकदम से कह दिया कि जी इलेक्शन होंगे। अच्छा जी, ये जो इन्होंने फिर ये अप्रैल के महीने में 10 दिन तक कॉन्स्टेंटली जो है ऑनलाइन इन्होंने 2500 लोगों के साथ सर्वे किया तो इनको पता चला इलेक्शंस कनाडा के लिए 17% ये बिलीव करते थे कि ये जो है गवर्नमेंट कुछ कवर अप करने की कोशिश कर रही है वैक्सीन्स के थ्रू और ऑटिज्म के जो मामलात हैं मुल्क में, 30% ने सोचा कि ये जो ड्रग्स और इनकी टेक्नोलॉजीज हैं ये लोगों के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं ताकि इनको जो है वो पता चल सके कि इनकी एफिकेसी क्या है, हालांकि गवर्नमेंट को उसकी कोई नॉलेज है नहीं। 40% ने कहा कि जी सर्टनली ये जो बिग इवेंट्स हैं इनको दुनिया के बड़े बड़े जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं ये उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए तो वो कहते हैं कि ये इतना इंटरेस्टिंग था ये इलेक्शंस कनाडा के लिए हमने जो सर्वे किया है, इतनी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी इलेक्शन से रिलेटेड इस दफा जो पहले इससे पहले कभी नहीं हुई। इलेक्शन होते हैं सीधे सीधे और लोग कहते हैं हाँ जी ठीक है इलेक्शन हो रहे हैं, टाइम पूरा हो गया गवर्नमेंट्स का और हम जो है अपने वक्त पे जो भी हमको पार्टी को वोट देना है हम उसको देंगे, लेकिन इस दफा ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने किया और उनको पता चला है कि बड़ी इस दफा जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो थी वो फिर रही थी, चक्कर लगा रही थी यानी कि जो है कनाडा के अंदर, तो ये इंटरेस्टिंग एक था। अच्छा जनाब, ट्रोरो पुलिस ने एक आदमी की जो है वो तस्वीर छापी है अभी और उन्होंने कहा है कि ये आदमी वॉन्टेड है और उन्होंने कहा है कि ये क्या करता था कि इसने एक विलियम्स पार्कवे पे एक लड़की थी उसको कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। अच्छा, इसको एक उसने गाड़ी भेजी और उसको अनडिस्क्लोज्ड उस पे लोकेशन पे ले गए और वहां पे उसने सेक्सुअली असॉल्ट किया इस बच्ची को। तो इस लड़की जो है ये 15 फरवरी का वाकया है तो उस दिन से टोरंटो पुलिस जो है इसके पीछे लगी हुई थी और इसने उस लड़की को बताया, उसके सामने कन्फेस किया कि जो 13 साल और उससे बड़ी लड़कियां जो होती हैं वो इसको बड़ा फैसिनेट करती हैं। तो अब पुलिस ने इसकी ये तस्वीर छापी और वो कह रहे हैं कि ये 30s में है, इसका हाइट जो है 5'6" है, शॉर्ट डार्क ब्राउन इसकी आईज हैं और ब्लैक हेयर हैं और इसका एक स्पेसिफिक एक्सेंट है। तो अब ये किस कम्युनिटी से है ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा,
ये कुछ तो लैटिन या हमारा अपना होगा या वरना तो लैटिन है ये।
हाँ, लैटिन है या कोई देसी लग रहा है ये। तो वो कह रहे हैं क्योंकि इसका काफी हैवी एक्सेंट है तो अब पता चलेगा कि कैसा है ये। ब्रिटिश कोलंबिया के जो हॉस्पिटल्स हैं जनाब उनकी बदबख्तियां काफी बढ़ गई हैं क्योंकि सर्जरीज जो है वहां पे जनाब उन्होंने काफी पोस्टपोन कर दी हैं। आज जो उनके हेल्थ मिनिस्टर हैं एड्रियन डिक्स, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम सर्जरीज इसलिए ये सारी डेफर होती जा रही हैं क्योंकि जो बहुत सारे अनवैक्सीनेटेड जो वर्कर्स हैं उनको हमने छुट्टी पे भेज दिया है। अच्छा, अब उसके जो इन्होंने हिसाब दिए हैं वो कहते हैं जी कि हमारे पास करंटली जो नहीं है बीसी में इम्यूनाइज जो हैं हेल्थ केयर वर्कर्स 3,325 हैं, जो कि वायलेशन है गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि एटलीस्ट वैसे तो हर किसी को लेकिन हेल्थ वर्कर्स को तो डबली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। वो कहते हैं ये प्रेशर्स हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ कैमलूप्स, एबट्सफोर्ड, नॉर्दर्न वैंकूवर, रिचमंड, न्यू वेस्टमिनिस्टर। वो कहते हैं हमारे इस वक्त हेल्थ केयर के जो लोग हैं वो 127,448 हैं, और इसमें से अगर ये लोग निकल जाएंगे तो जाहिर है कि हमारे पास काफी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इसमें से भी बहुत बड़ा नंबर है जो कि सिर्फ 2% जो जिनको के फुली वैक्सीनेटेड हैं, बाकी के बहुत बड़ी जो तादाद है वो भी सिर्फ उन्होंने सिंगल डोज ही ली है। लेकिन ये लोग जो हैं इनको चूंकि हमने अब छुट्टी पे भेज दिया है तो इसलिए अब डे टू डे कामों को संभालना मुश्किल हो गया तो सर्जरीज नहीं हो पाएंगी। तो ये जाहिर है कि बड़ा क्राइसिस है क्योंकि सर्जरीज वैसे भी डिलेड थी कोविड की वजह से और बड़ी मुश्किलों से।
नॉट ओनली दैट, सेम प्रॉब्लम इज इन पुलिस डिपार्टमेंट, सेम प्रॉब्लम इज इन टीटीसी, सेम प्रॉब्लम इज इन गो बसेस, सेम प्रॉब्लम बहुत सारे जो उन्होंने बायलॉज पास किए हैं कि भाई आप हमें दिखाएं और मेक श्योर दैट यू आर फुली वैक्सीनेटेड। हालांकि गवर्नमेंट ने इनको काफी लंबा एम्पल ऑफ टाइम दिया था, यू नो आपको याद होगा कि कई कई महीनों पहले उन्होंने कहा था कि भाई 30th of October इज द लास्ट मंथ, सो आप उससे पहले पहले करवा लें, मगर लोग जो इनके फेवर में नहीं है उन्होंने नहीं करवाया एंड मोस्ट प्रॉब्ली दे गोन लूज देयर जॉब।
यस दैट्स राइट, एग्जैक्टली। अच्छा जी, आरसीएमपी ने आज एक वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एक केस, और ये तो बड़ा ही अजीब केस हुआ है। अल्बर्टा में एक बस जो थी बच्चों की, स्कूल बस जा रही थी और अचानक से एक जो ट्रक है उसने एक टर्न लिया, और जैसे ही उसने टर्न लिया तो लॉग्स नहीं होती बड़ी बड़ी, वो लॉग्स आके गिरी। ये देखें आप जरा, ये देखें कितनी खतरनाक थी ये, कि ये विंडोज के ऊपर लगी है और बड़े बुरे तरीके से। लेकिन बच्चे जो हैं बच गए हैं, वैसे यहां पे कोई इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती थी चीज। तो अब ये जो है सारी चीज को वो आरसीएमपी अब करिए, अभी कोई फर्दर डिटेल्स उन्होंने नहीं दी हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये जो स्कूल बस थी ये पेम्बिना हिल्स स्कूल डिवीजन के जो बस थी उसकी थी, और फिर वो जाहिर है वाइस प्रेसिडेंट जो थी वहां पे, वाइस प्रिंसिपल सॉरी जो थी वहां पे स्कूल की, उन्होंने फिर जो है वहां पे फैमिलीज को भी फोन किया और जो स्कूल बोर्ड में लोग थे उनको भी इन्फॉर्म किया और उनको बताया कि भाई बच्चे सारे सेफ हैं जो इसके अंदर सफर कर रहे थे। बहरहाल ये जो है बड़ी ही आज हैरत की बात है कि ये लॉग्स गिरी हैं और बड़े बुरे तरीके से,
बहुत शुक्र है अल्लाह का
हिट किया बड़े बुरे तरीके से, वरना ये तो किसी के सर वर पे बच्चे पे लगे तो काफी सीरियस इंजरी आ सकती थी। अच्छा जनाब, आज COP26 की जो ये जो मीटिंग चल रही है उसके ऊपर, तो उसके आज ऊपर आज उसमें आज 100 जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने आज कहा है कि डिफॉरेस्टेशन को खत्म करना पड़ेगा, और जब तक ये डिफॉरेस्टेशन खत्म ना की तो क्लाइमेट चेंज जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आपको पता ही है कि कुछ अर्सा पहले हमने बताया था, ये इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के होने से पहले ही बोरिस जॉनसन साहब जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इमरान खान साहब की काफी तारीफ की थी कि वो जो 2 बिलियन ट्रीज का सुनामी लेकर आ रहा है वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ए वेरी एम्बिशियस प्लान, सो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नीड्स टू डू दैट। आज ये जो थे कंट्रीज लाइक ब्राजील, इंडोनेशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो हैं ये बेसिकली 85% ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट्स इनके पास हैं अभी तक, तो इन्होंने भी इसके अंदर जो है वो कहा है कि हम इसको मेंटेन रखना चाहेंगे, डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देंगे अपने मुल्कों में। और फिर यहां पे ये भी कहा गया है कि इसके लिए तकरीबन 19 बिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं स्पेंड किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं, क्योंकि वो कहते हैं जी कि दरख्त जहां पे लगाए जाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और वैसे भी जो सिल्टिंग हो जाती है लैंड में, खराबी जो आ जाती है उसके अंदर और वो जो इरोजन आने लगते हैं उसको भी ट्रीज जो हैं वो रोकते हैं। आज ये जो इनका था कॉन्फ्रेंस थी ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज के अंडर थी, जिसमें कि ये कहा गया है कि टोटल एरिया जो है वो 33.7 माइल स्क्वेयर मीटर स्क्वेयर किलोमीटर जो है ये इसको इसके ऊपर जो है करने की जरूरत है फॉरेस्टेशन। और वो कह रहे हैं कि ये काफी हमने जो प्लेजेस हैं वो हमने इस तरह भी हम लेना चाहते हैं कि ये ज्यादातर फॉरेस्ट के अंदर इंडिजिनस किस्म के लोग रहते हैं, तो उनको हम कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग जो हैं ये इसका ख्याल करें अपने फॉरेस्ट का और ज्यादा यहां पे कटिंग्स वगैरह ना होएं तो ज्यादा अच्छा है। वो कहते हैं जी कि वर्ल्ड जो है अभी तक उसने दुनिया में 258,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है वो खो चुके हैं और ये 2020 की फिगर्स हैं और वो कहते हैं कि दिस एरिया इज बिगर देन द होल ऑफ यूके, तो विच मीन्स दैट द कंडीशन इज वेरी वेरी सीरियस और उसके लिए कुछ काम करने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में कॉन्स्टेंटली झगड़े चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं और आज फिर बड़े एलिगेशन आज तो लगाए हैं जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के मैक्रॉन, और उन्होंने कहा है जी कि ये तो इस बंदे की तो कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। अच्छा जी, हुआ क्या है? हुआ ये है कि ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर छप गई है जिसमें कि फ्रांस ने कहा था कि हमको लग रहा है कि हमको एक बैड न्यूज आने वाली है, और वो बैड न्यूज ये थी कि बाइडन साहब जो थे जिस वक्त वो बात कर रहे थे मैक्रॉन साहब के साथ, तो उन्होंने कहा था कि जिस वक्त ये डील हो रही थी इसकी, ये $66 बिलियन की जी सबमरीन डील थी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो स्क्रैप कर दी गई थी और फ्रेंच स्टेट ओन नेवल ग्रुप जो था वो इसको बना रहा था, तो वो कहते हैं जी कि इसके बारे में तो बाइडन साहब ने इनको मैक्रॉन साहब को कहा कि मुझे तो लगता है आपको पहले बता दिया गया था इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, और जब इनकी मुलाकात जून में हुई थी मैक्रॉन साहब और मॉरिसन साहब की तो उस वक्त ये कहते हैं जी कि इधर डिनर हो रहा था पेरिस में तो इन्होंने मेरे से झूठ बोला था, इन्होंने मेरे से सच नहीं बोला था, मुझे बताया नहीं था कि क्या व्हाट इज गोइंग ऑन। तो आज जब इन्होंने ये कहा तो फिर मॉरिसन साहब ने भी कहा कि तुम क्या बातें करते हो भाई, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, तुम्हारी तो खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो मतलब वॉर ऑफ वर्ड्स जो हैं काफी बढ़ गए हैं इनके बीच में, काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट सब चलते रहते हैं इनके साथ, और पता नहीं अब यूरोपियन यूनियन कैसे इकट्ठे रहेगी।
नहीं तो वही मैं कह रहा था कि यूरोपियन यूनियन जो है मुश्किल में पड़ गई है,
मुश्किल में, बहुत मुश्किल में पड़ गई है भाई, ये तो बड़ा डिरामा शुरू हो गया है।
श्री साहब उन्होंने बड़ा राज किया दुनिया पे, अब जरा आपस में
हाँ 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 जरा ठंडे बाट के खाएं ना, ठंडे होके खाएं,
ठंडे होके खाएं, क्योंकि बहुत बहुत राज किया उन्होंने,
बड़े ड्रामे किए,
बड़े ड्रामे किए।
तो अब ये जो है ये दोनों ही जो है मुल्क इनको ठंडा करके खाने की जरूरत है। अच्छा जी, यूनाइटेड नेशंस का जो मिशन है इन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उन्होंने आज बड़ी अफसोस की खबर दी है, उन्होंने कहा जी कि ये जो इजिप्शियन बेचारे कुछ जो ट्रुप्स थे वो आ रहे थे पीस कीपिंग मिशन के लिए यूनाइटेड नेशंस में, और उनके ऊपर जो है वो अनवॉरेंटेड फायरिंग की गई है जिसकी वजह से 10 जो इजिप्शियन लड़के हैं फौजी वो जख्मी हो गए हैं और उनको फौरन जो है वो हॉस्पिटल में लेके गया जाया गया है। तो वो कहते हैं कि वो जैसे ही एयरपोर्ट से आए हैं, जैसे ही वो उतरे हैं वहां पे, तो वैसे ही साथ ही जो है उनके ऊपर जो हैवी फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो लड़के जो है वो, और उनके पास जो थे वो वेपन्स भी नहीं थे उस वक्त ना, पीस कीपिंग मिशन है तो उनके पास तो वो वेपन्स वगैरह भी नहीं थे, और उसी वक्त वो आए थे तो उनके ऊपर किया, तो बहरहाल जी उनको लेकर गए हैं वहां पे जो हॉस्पिटल है उनके वहां पे कैपिटल के अंदर बेंगुई के अंदर, तो अब देखेंगे उनकी हालत जो है लड़कों की कैसी आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। लेकिन जाहिर है कि इजिप्ट ने इसका काफी बुरा बनाया कि भाई क्या मतलब है, एक यूनाइटेड नेशंस की कार है, यूनाइटेड नेशंस की कार्स के ऊपर लिखा होता है ना यूएन, तो अगर उनकी गाड़ियों को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं,
नॉर्मली वर्ल्ड एफिक्स यही होते हैं कि उनकी गाड़ियों को हाथ छेड़
नहीं, उनके ऊपर फायरिंग वगैरह नहीं की जाती है। तो बहरहाल वो कहते हैं जी ये क्या है। अच्छा जनाब, फेसबुक जो है आज उन्होंने बड़ा मेजर एक अनाउंसमेंट की है और उन्होंने कहा है कि हम जो ये अपना फेस रिकग्निशन सिस्टम है इसको शट डाउन करने हैं हम लोग, और वो कहते हैं जी कि इसमें जो फेस प्रिंट्स हैं तकरीबन 1 बिलियन लोगों के वो डिलीट हो जाएंगे। इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं जेरोम पेसेंटी, उन्होंने कहा है कि हमारे तकरीबन 1/3 ऑफ फेसबुक के जो डेली एक्टिव यूजर्स हैं उन्होंने ऑप्ट किया था इसके लिए, और अब जो है हम इसके ऊपर और काम कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं जी अभी तक हमें चूंकि रेगुलेटर्स ने प्रॉपर बताया नहीं है प्रॉपरली कि और आगे चल के फ्यूचर में इसके ऊपर कैसा काम करना है, तो हम और ज्यादा डिटेल्स नहीं दे सकते, लेकिन अभी के लिए तो हम बिल्कुल जो है ये डिलीट कर रहे हैं।
Exactly.
तो कुछ लोगों को तो ये बात अच्छी लग रही है और कुछ लोगों को ये अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन बात यह है कि अगर आप जैसे ये इनके आईफोन्स और स्मार्टफोन्स हैं जिसमें कि आप फेस रिकग्निशन कर लेते हैं तो लोगों को ट्रेस करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है अगर ये डिलीट कर रहे हैं तो, लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कहती हैं कि ये अब जरा थोड़ा काम मुश्किल हो जाएगा, वरना पहले लोगों को ट्रैक करना आसान हो जाता था। तो भाई पाई साहब आपने हर किसी के ऊपर ट्रैक क्यों रखा हुआ है,
फिर निकाल देंगे कोई ना कोई,
हाँ और कोई नई जुगाड़ कर लेंगे हैं, लेकिन पाई साहब आपको क्यों पता होना चाहिए कि मैं कैसी दिख रही हूं है भाई, क्यों यानी क्यों, व्हाई, दैट इज माय क्वेश्चन है जी। अच्छा जी, अच्छा जनाब, ये काबुल के अंदर जो है लग रहा था वैसे कि तालिबान वगैरह आ जाएंगे तो कुछ मामलात वहां पे दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तालिबान की कुछ ग्रिप इतनी ज्यादा हो नहीं रही, क्योंकि आईसिस वाले कॉन्स्टेंटली जो हैं वो करते हैं, आपको पता ही है कि फ्राइडे के दिनों में तो खास तौर पर शियाज के ऊपर करते हैं। आज भी उन्होंने काबुल के, अब ये तो मिलिट्री हॉस्पिटल था और ये काबुल का सबसे बड़ा मिलिट्री हॉस्पिटल है, बल्कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री हॉस्पिटल है, यहां पर उन्होंने अटैक किसी ने किया, अभी तक किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया पता नहीं चला। 19 जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई है, 43 जो हैं बड़े जो हैं वो वुंडेड हैं, और ये दो एक्सप्लोजन्स हुए हैं विच वॉज फॉलोड बाय गन फायर। तो अब इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं सरदार मोहम्मद दाऊद खान, वो कह रहे हैं कि जी ये जो दो ब्लास्ट हुए हैं, ये 400 बेड का एक हॉस्पिटल था काबुल के 10th डिस्ट्रिक्ट में, और ये कार बॉम्ब समझा जा रहा है कि उसमें हुआ, और उसके बाद फिर फायरिंग भी यहां पे की गई। अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है तालिबान की, उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन हैं कि भाई आप चूंकि इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं चला रहे तो शायद इस वजह से हो रहे हैं ये जो है ब्लास्ट जो है बॉम्ब ब्लास्ट, या फिर जो है आप में इतना सा नहीं है कि आप जो है मुल्क को चला सकें और कंट्रोल कर सकें इसको, तो ये कि क्या हो रहा है, ये एवरी वीक एक ब्लास्ट हो रहा है काबुल के अंदर, एवरी वीक हो रहा है, तो भाई ये गवर्नमेंट कैसे चल रही है। तो भारत वो कहते हैं जी कि हमारे अभी बड़े टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, अभी तो हमने लिया है, अभी तो हमें कुछ हफ्ते हुए हैं, तो भाई सिक्योरिटी के मसले तो आपके मुल्क में वैसे ही चल रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का काफी कंसर्न जो है दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा जी, इंडिया के अंदर कुछ इलाकों के अंदर जो हैं वो बाय इलेक्शंस थे, और उस बाय इलेक्शंस में काफी हार का सामना करना पड़ा है रूलिंग बीजेपी जो है। इसमें सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं स्टोरी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो इलाके थे मंडी, अकरी, फतेहपुर, जुबल, क्वाटरी, इनके अंदर जो है इलेक्शंस थे, और इनके अंदर जो है कांग्रेस ने काफी बड़ी जीत ली है, खासतौर पर जो मंडी का एरिया था, इसलिए कि यहां पर वैसे तो ये खाली हो गया था यहां पर जब इनके एमपी बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा की डेथ हो गई थी, लेकिन इसको जो है वो टर्फ समझा जाता है जो चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त जय राम ठाकुर जो हैं उनकी, तो भी ये मंडी की सीट जो है ये हार गए हैं कांग्रेस को। और इसके अलावा जो थी दूसरी, इन्होंने बड़ी एक समझदारी की थी अपनी तरफ से बीजेपी ने, कारगिल के एक हीरो जो थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर कौशल ठाकुर, उनको यहां से खड़ा किया था, और उनको लगता था कि वेटरन्स भी और दूसरे लोग भी क्योंकि कारगिल के हीरो हैं तो बड़े इनको जो है वोट्स मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस ने और भी अच्छी जो है वहां पर गेम खेली। वहां पर उन्होंने फॉर्मर एमपी प्रतिभा सिंह जो के एक्स चीफ मिनिस्टर वीर भद्रा सिंह की वाइफ थी उनको खड़ा किया, तो वहां पे उनकी लोगों के साथ काफी ग्रासरूट लेवल पे पॉपुलैरिटी थी, तो वो यहां पे जीत गई। तो बीजेपी एज अ रिजल्ट एक सिंगल सीट भी मध्य प्रदेश में कई बाय इलेक्शंस में नहीं जीत सकी। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरी जगह थी वो थी हरियाणा। हरियाणा में तो आपको पता ही है वो फार्मर्स हैं हरियाणा के जो कि एक साल से वो उधर बैठे हुए हैं सिंगू बॉर्डर पे, तो यहां पे भी इन्होंने जो है कोशिश बड़ी की बीजेपी ने जीतने की, लेकिन यहां पे इंडियन नेशनल लोक दल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं अभी अभय छोटाला वो जो है वो यहां से जो है वो जीत गए हैं, और इन्होंने बीजेपी के गोविंद कनाडा को जो है वो कांडा को शिकस्त दी थी। इसी तरह वेस्ट बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है हमारी दीदी की जो पार्टी है टीएमसी वो जो है वो जीती है, और चारों सीटें वो जीती है जी वेस्ट बंगाल की। हालांकि जो बीजेपी था वो बहुत ज्यादा रेसल कर रहा था दो सीटों पर, खासतौर पर एक था दिनहरता का और एक संतीपुर का, क्योंकि ये इनकी दो सीटें थी, लेकिन इसमें भी वो लूज कर गए। तो जो है इस तरह से वेस्ट बंगाल में चारों सीटें जो है टीएमसी ने जीती है, तो जिसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये जो अंडर करंट है देयर इज अ डेफिनेट अंडर करंट अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी बीजेपी, क्योंकि ना तो वो एम्प्लॉयमेंट दे सके हैं जो कि उनका प्रॉमिस था, या तो गवर्नर्स भी नहीं कर सके हैं, और भी जो ये प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर जा रही हैं चीजों की, पेट्रोल की, डेली कमोडिटीज की, तो काफी वहां पे जो है, और इसके अलावा भी वो जो हर वक्त केसेस बन रहे हैं टेररिज्म के और अनरेस्ट है और डिविसिव पॉलिसीज हैं और डिविजन्स हैं लोगों के बीच में जो उन्होंने क्रिएट बीजेपी के नहीं किया, तो इसलिए वो काफी देखा जा रहा है कि उसकी शायद ये वजह हो सकती है कि कोई भी बाय इलेक्शन जो है ये जीत नहीं पाए हैं। अल जजीरा की जनाब एक स्टोरी है, एंड दिस अगेन ये आपके रोंटे खड़े कर सकती है जो ये स्टोरी है, ये इन्होंने कोट किए हैं बीजेपी के एक पॉलिटिशियन हैं, इनका नाम है विक्रम रंधावा, और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये होते हैं, और जिस वक्त पाकिस्तान ने जीता था इंडिया के अगेंस्ट मैच तो आपको पता ही है कि यहां पे कश्मीरी मुसलमानों ने काफी सेलिब्रेशंस की थी और दूसरी जगहों पे भी आगरा वगैरह में भी की थी। तो ये जो हैं इन्होंने आज कहा है अपनी एक वीडियो में जो देखा जा रहा है, तो वहां पे उसको नजर वो सुना जा सकता है इनको, वो कह रहे हैं कि हर वो बंदा जिसने पाकिस्तान के लिए चीयर किया और इंडिया को नहीं किया उनकी 10 विकेट डिफीट के बाद अक्टूबर 24 को यूएई में जो ये T20 का वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, तो इन सब को दे शुड बी स्किंड अलाइव। ये इनका वीडियो जो है वो सर्कुलेट कर रहा है स्किंड अलाइव, और वो कहते हैं जी कि ये तुम मुसलमान सारे जो तुम तो ये बाकियों को गोरों को तो तुम काफर कहते हो, तो जिस वक्त इंडिया से जीता था तो तुम लोगों ने तो बड़ा सेलिब्रेट किया पाकिस्तान की विक्ट्री, तो जिस वक्त पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीता तो फिर तुम लोगों ने क्यों नहीं इतना सेलिब्रेट किया विक्ट्री को। तो वो कह रहे हैं कि ये जो जो जिस जिसने ये सेलिब्रेट किया है वो जो है उनकी जो थी मां मर गई थी उस वक्त जिस वक्त न्यूजीलैंड से ये जीते, यानी वर्ड्स इनके सुने जरा, देयर मदर डाइड एक्चुअली, ये इनके वर्ड्स हैं जो इन्होंने कहा है। तो वो कहते हैं जी कि मैं उनके मुस्लिम पेरेंट्स को जो कश्मीर के हैं उनको कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बच्चे जो हैं इंतहाई अनग्रेटफुल हैं और हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, और तुमने इंतहाई अनग्रेटफुल बच्चों को पैदा किया है और आने वाली जनरेशन जो हैं वो सबक उनको याद रखना चाहिए, इनको ऐसा सबक देना चाहिए। तो ये जब इनके भड़कीले से बयान आए तो जाहिर है वहां पे काफी शोर वोर मचा, तो इनको भी तो बुक किया गया है इस हेट स्पीच के लिए, लेकिन जाहिर है बुक ही किया है, बस वो उनको सजा वजा थोड़ी मिलनी है, छोड़ छाड़ ही देना है, बहरहाल एनीवेज वी डोंट नो, बट अभी तक ये हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जी तकरीबन ओवर 800 TLP के जो एक्टिविस्ट थे जनाब उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि जी डील हो गई है, गवर्नमेंट कहती है हमारी इनके साथ भाई चंगी गवर्नमेंट है, आपकी चंगी डील हुई है इनके साथ। अब जी जो ओनली मुद्दा रह गया है वो मुद्दा रह गया है कि इनका जो लीडर है वो साद रिजवी, वो कहते हैं जी उसको भी छोड़ें, उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि वो ड्यू प्रोसेस में चलेगा, वो जुडिशियल इंक्वायरी बैठेगी उसके ऊपर ये चलेगा, उसके साथ होएगा। बहरहाल जी वो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने आज कहा है कि ये जिनके ऊपर फॉर्मल क्रिमिनल केसेस नहीं थे, तो फिर आपने इनको पकड़ा क्यों इन द फर्स्ट प्लेस भाई, अगर फॉर्मल क्रिमिनल केसेस नहीं थे तो मतलब ऐसे ही पकड़ लिया आपने, अंदर कर दिया। तो अब इसलिए हमने वो लोग छोड़े हैं, हमने सारे नहीं छोड़े हैं। ये नेगोशिएशंस हमने आपको बताया था कि ये की थी फेडरल मिनिस्टर अली मोहम्मद खान के ने जो चेयर की थी इस मीटिंग में, और इसके अंदर जो थे लॉ मिनिस्टर राजा बशारत थे, सेक्रेटरीज ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री थे, एडिशनल सेक्रेटरीज पंजाब होम डिपार्टमेंट थे, और कुछ जो है TLP के जो थे वो मेंबर्स भी थे। तो इनकी जो है बातचीत हो गई थी, और ये हमने कल भी बताया था कि वो मेन सड़कों से हट गए, अब साथ वाले ग्राउंड में बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं अब जी साद रिजवी को छोड़ें। तो ये जो है इनके बीच में हुई है, तो पता नहीं गवर्नमेंट जो है वो कैसी निगोशिएशंस भी करती है और ये कैसे मामला चलाते हैं, बहरहाल ऐसे ही है। फवाद चौधरी साहब ने जनाब आज कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कल वेंसडे को एक बहुत बड़ा मेगा रिलीफ पैकेज, ये जो राइजिंग प्राइसेस हैं इनके अगेंस्ट अनाउंस करने वाले हैं। आज फेडरल कैबिनेट की जो मिनिस्ट्री की जो फेडरल कैबिनेट की जो मीटिंग थी वो हो रही थी, और मीटिंग से बाहर आने के बाद जो है फवाद चौधरी ने कहा है, उन्होंने कहा है जी कि ये जो अभी इकोनॉमिक कंडीशन है और ये जो मुल्क के अंदर जो पॉवर्टी एलिवेशन हमने प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं अंडर एहसास, तो उसके अंडर ये एक प्रोग्राम जो है अनाउंस किया जाएगा कल, जिससे कि पाकिस्तान की 53% पॉपुलेशन को फायदा होएगा। और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को आज बड़ा क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा ना तो ये अपनी गवर्नेंस इंप्रूव कर रहे हैं, ना कोई इनके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज ठीक हो रहे हैं, और उन्होंने कहा जी कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो राइजिंग प्राइसेस के और ये सब चीजें इन्फ्लेशन के खिलाफ, ये जो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ जो बड़े ये इनकी गवर्नमेंट जो है नारे लगा रही थी, तो क्या अब चीफ मिनिस्टर सिंध के घर के बाहर जाके भी अब ये नारे लगाएगी इस तरह के? तो इस तरह की उन्होंने आज जो है कुछ बातें की हैं। टीएलपी से रिलेटेड जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा जी अभी तक डिटेल्स जो हैं गवर्नमेंट ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट के साथ शेयर नहीं किए हैं, इसलिए मैं भी आपके साथ कोई डिटेल्स शेयर नहीं करूंगा, और इसकी डिटेल्स जो हैं वैसे भी आपको फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो फर्दर देंगे, वो इसके ऊपर कॉमेंट करेंगे। आज क्या हुआ जी कि इंडिया एक 10 नवम्बर को एक अफगानिस्तान के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है न्यू दिल्ली में, और उन्होंने उसके अंदर उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, पाकिस्तान सबको बुलाया है। पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मुईद यूसुफ साहब, उन्होंने कहा है कि एक ऐसा कंट्री जो कि रीजन के अंदर स्पॉइलर प्ले करता है, मैं उस मीटिंग में जाना पसंद नहीं करता, और मैं हम नहीं जाएंगे, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो कहते हैं जी कि इनका जो ताल्लुक है जहां तक अफगानिस्तान का है तो हम उनके साथ कॉन्स्टेंटली इन टच हैं, हम वहां पर पीस लाने की कोशिश उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन हम दुनिया को यह भी कहना चाहते हैं कि उनके इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं, तो इसलिए इंडिया के अंदर जो कुछ जो दो चार रह गए हैं इंडिपेंडेंट मीडिया वाले वो कह रहे हैं कि चूंकि हिंदुस्तान में अब मसले जो हैं बेतहाशा इश्यूज जो हैं मुंह खोल के खड़े हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन का, बैड गवर्नर्स का और वो सारा, और ये जो हर वक्त यूएपीए लगाते हैं, जर्नलिस्टों को मारते पीटते हैं, उन सारी चीजों से डिफ्लेक्ट करने के लिए ये अफगानिस्तान के ऊपर जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है ये करवा रही है इस वक्त। पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन है आसिम इफ्तखार, उन्होंने कहा है जी कि हम जो है ऑलरेडी बहुत सारा जो है हम ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उनको देते भी हैं और दुनिया को भी कह रहे हैं, और पाकिस्तान बहुत क्लोजली अफगानिस्तान के साथ काम कर रहा है। इसमें पाकिस्तान ने 80,000 लाइव्स जो हैं वो लूज की हैं, और जो यहां पे हमारी इकोनॉमी थी पाकिस्तान की उसको 150 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था। तो जिस वक्त जो है अफगानिस्तान में प्रॉब्लम्स होते हैं तो पाकिस्तान भी हर्ट होता है। ये मुईद यूसुफ साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान सबसे ज्यादा हर्ट होता है तो हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, एंड वी आर वर्किंग विद सम अदर यू नो लीडर्स एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग पीस इन दैट कंट्री, सो वी डोंट रियली नीड टू सिट इन द कॉन्फ्रेंस दैट इज बींग ऑर्गेनाइज बाय इंडिया। क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तान ने और सेप्टेंबर में और ईरान ने जो अक्टूबर में अभी अर्ली अक्टूबर में जो करवाई थी मीटिंग्स करवाई थी अफगानिस्तान में, उनके अंदर उन्होंने इंडिया को नहीं बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि जो स्टेक होल्डर्स मेन हैं उन्हीं से हम बात करेंगे। पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो हैं जी उनके बीच में कुछ एक जॉइंट सिक्योरिटी कमीशन जो है वो अब बिठाया गया है, और आज इस चीज का जो अनाउंसमेंट था वो भी फॉरेन ऑफिस ने किया। और जो उज्बेकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर मखमूदोव जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं, और उनकी मुलाकात जो है पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मुईद यूसुफ से हुई है। और यहां पे म्यूचुअल इंटरेस्ट की सिर्फ बातें नहीं की गई हैं, और यही नहीं कहा गया कि हम कैसे ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, बल्कि जो रीजन की सिचुएशन है अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी जो है काफी बातचीत जो है वो की गई है। और ये जो है अपना 5 मेंबर डेलीगेशन लेके इस्लामाबाद आए हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मखमूदोव, और जो नेक्स्ट अब जो होएगा नेक्स्ट जो अब सेशन होएगा वो उज्बेकिस्तान में होएगा, तो उसके अंदर फिर से ये जो है फर्दर इस चीज को आगे लेके जाएंगे। बलूचिस्तान का जो खरन बाजार का एरिया है जी, वहां पे आज फिर एक इम्प्रूवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो थी एक मोटरसाइकिल में जो लगी हुई थी वो एक्सप्लोड की है। वहां पे 11 लोग जो हैं 11 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, उनको DHQ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने इसको टेररिज्म कहा है, इसको टेररिस्ट एक्ट कहा है, और उन्होंने कहा कि इंक्वायरीज पे बिठाई जाए। उन्होंने कहा ये जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, ये जो प्रोविंस का पीस खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि हम सब जो है अपने सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा जनाब, कोहली साहब जो हैं उनकी बदबख्तियां क्रिकेट के मैदान में तो बढ़ ही रही हैं, क्रिकेट के मैदान के अलावा भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जैसे कि कल हमने आपको बताया कि उनकी 10 महीने की बेटी के लिए रेप के वो थ्रेट्स आए थे। अब क्या हुआ है कि ट्विटर जो है वो इतना ज्यादा भड़का हुआ है कोहली साहब से कि वो कहते हैं जी इसको निकालो और हमको ये नहीं चाहिए है। तो अब मेरे जैसे जो है कोहली साहब से प्यार करने वाले पाकिस्तान में लोग वो कह रही है अगर आपको कोहली नहीं चाहिए तो आप पाकिस्तान भेज दो। अच्छा, जब ऐसे कॉमेंट्स आने शुरू हुए कि आप पाकिस्तान भेज दें हमारे पास, तो इंडिया में भी लोग कुछ चुप होने वाले नहीं थे। किसी ने कहा अच्छा ठीक है कोहली ले लो और हमको जो है अपना अली जफर दे दो। फिर किसी ने कहा अच्छा जी तुम जो है वो कोहली ले लो और तुम हमको हाँ नहीं बाबर आजम नहीं दे दो। वो कहते हैं जी हमको जो है वो दे दें आप अपना ये जो है फवाद खान दे दें। और एक बंदे ने तो हद ही कर दी, उसने कहा तुम हमारी पूरी टीम इंडिया की ले लो क्रिकेट की और हमको सिर्फ एक फवाद खान दे दो, क्योंकि हमें पता है कि ही इज अ नेशनल ट्रेजर। तो ये जनाब बड़ा आज जो है ये ट्विटर जो है आज भड़का हुआ है कोहली जी के ऊपर, तो पाकिस्तान जो है उससे काफी प्यार इनको आ रहा है। एक हमने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान की पहली जो खातून जनरल के लेवल पे जिनको के रेस किया गया था निगार साहिबा जो हैं, उनके ऊपर एक फिल्म बनने जा रही थी जो कि अब बन गई है। इस फिल्म का नाम है एक है निगार, लेकिन अब ये जब बन के आई है तो इसके रिव्यूज कुछ इतने अच्छे नहीं आए हैं। अच्छा, जो निगार का रोल है वो प्ले कर रही हैं माहिरा खान, और उनके जो हस्बैंड बने हुए हैं वो बिलाल अशरफ बने हुए हैं। इस फिल्म को बनाया है अदनान सरवर ने, और इसको जो राइट किया था वो उमेरा अहमद ने किया था। तो वो कह रहे हैं जी ये तो बिल्कुल एक विकीपीडिया का आर्टिकल लग रहा था, ये तो कोई अच्छी फिल्म बनी हुई नहीं लग रही थी। उस लड़की की वो जो जनरल के लेवल पे राइज करके गई है पहली पाकिस्तान की औरत, उसकी तो सारी स्ट्रगल्स दिखानी चाहिए थी आपको इस फिल्म में। आपने एक वो जो होती है ना वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बस वो बना के जो है लोगों को पेश कर दी है, और इंतहाई ये बोरिंग है और बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस। इसमें खासतौर पर जो मिलिट्री का रोल बताया गया है वो 2021 पाकिस्तान मिलिट्री का रोल बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस है और इंतहाई बकवास फिल्म बनाई है। तो काफी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आया है। अच्छा जी, शाहरुख खान साहब, किंग खान, पता नहीं अब रहे हैं कि नहीं रहे हैं, ही टर्न्स 56 टुडे। हमने कल आपको बताया था कि वो कर रहे हैं, वैसे तो उनका मन्नत वन्नत भी काफी सजी हुई है, उनका जो रेजिडेंस है उसका नाम मन्नत है दिवाली के लिए, लेकिन जाहिर है कि बड़ा लो प्रोफाइल रख के आज उन्होंने अपनी बर्थडे मनाई। लेकिन जाहिर है कि जो उनके फैंस थे वो तो बाहर ही खड़े हुए थे सुबह से ही, तो उन्होंने इनको कहा, उन्होंने कहा कि किंग खान, यू आर किंग इज किंग और यू आर द सुपर स्टार ऑन दिस, बिगेस्ट सुपर स्टार ऑन दिस अर्थ। एंड जो आर्यन खान उनका बेटा जो अरेस्ट हो गया था उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोगों ने कहा द बैड टाइम इज ओवर सर एंड हैव अ गुड वन। एंड शाहरुख खान फिर जो थे वहां पे खड़े, इनको हाथ हिलाए थोड़ी देर के लिए आए, और फिर उन्होंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो उन्होंने अपने मुलाजमों को कहा कि भाई उनके लिए बिस्किट्स और पानी लेकर जाओ, लोगों के लिए वो काफी देर से खड़े हुए हैं, हो सकता है भूखे और प्यासे हुए तो वहां पर लगे गए हैं। एंड जनाब, दुबई के अंदर आज जो है, यानी कि कल रात को दुबई में सेलिब्रेट किया गया है जॉर्जियो अरमानीज 50 इयर्स इन फिल्म इन फैशन इंडस्ट्री एंड 10 इयर्स ऑफ अरमानी होटल्स इन बुर्जुल खलीफा। तो वहां पे जबरदस्त किस्म का जो था वो फैशन शो था, और वहां पे जो है इसके अलावा वो गए हुए हैं विल स्मिथ साहब, और विल स्मिथ साहब जो है वो भी अपनी वहां पे एक फिल्म बना रहे हैं, तो वो भी बुर्ज खलीफा के ऊपर देखेंगे। एंड पाकिस्तान टुडे जो है वो मैच जीत के जनाब फिर से नामीबिया से, और ये भी बड़ी जबरदस्त थी इनकी विक्ट्री, इन्होंने 145 पर 5 पे इनको रिस्ट्रिक्ट किया, और बाबर आजम 70, मोहम्मद रिजवान 79। एंड आईसीसी ने कहा है कि जो ब्रिटिश एम्पायर माइकल गू हैं उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा, वैसे उनको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वो जो बायो सिक्यूलर जो सिक्योर जो वो एनवायरमेंट है उससे उसको इन्होंने वायलेट किया। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट फॉर्मर फीफा ऑफिशियल्स सेप ब्लेटर जो कि 85 इयर्स के हैं एंड माइकल प्लेटिनी 66, इनके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लगाए गए हैं क्योंकि इन्होंने जो है कहा गया है अलेजली ब्लेटर साहब ने फीफा को कहा कि $2 million दो, मैंने री इलेक्शन के लिए लड़ना है, तो ये कहा गया उनको अगेंस्ट अकतारी मोहम्मद बिन हमाम। तो इन्होंने कहा जी कि इन्होंने इलीगली इस पैसे को यूज किया, ये अपने यूज के लिए पैसा नहीं कर सकते, और अगर इनके ऊपर चार्जेस साबित हो गए तो फिर ये जेल में काफी टाइम गुजार।
ओल्ड मैन
बोथ ऑफ देम, आई मीन इवन प्लेटिनी इज नॉट रियली जो है वो, इन्होंने कहा जी कि ये इन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फीफा फंड, मिस मैनेजमेंट, फोर्जरी एंड ऑल दीज के लिए इनको जी, फ्रॉड के लिए इनको दोनों को पकड़ा गया है।
ये थी हमारी आज की न्यूज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया जी, एंड बकिया की खबरें अब से लेके कल तक जो है वो कल हम सुनाएंगे आपको, जस्ट स्टे ट्यून्ड, हम अम्मी को देखते रहे आप और कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम, और यहीं पर हम आपसे जा चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वॉच करने का, देखने का, सुनने का, कॉल्स का, एवरीथिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद,
पाकिस्तान पाइंदाबाद, कनेडा पाइंदाबाद ऑल्सो।
अल्लाह हाफिज।
Town Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
फिर सवर जाए इलाही, मेरा जाहिर सवर जाए इलाही, मेरे बातिन की जुल्मत दूर कर दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मैं वहदत पिला मखमूर कर दे, मैं वहदत पिला मखमूर कर दे, मोहब्बत के नशे में चूर कर दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com, लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM वॉइस ऑफ कम्युनिटी, फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
मुझे प्यार इतना करो ना मुझे प्यार, यूं ना कभी करना इंतजार,
मैंने किया है तुमसे प्यार,
तूने क्या किया बेलिया, ये तूने क्या किया, सच मानो जिंदा
रह ना सकूंगा। जीना मरना मेरा जानम तेरे हाथ है।
मैंने कहा ना सनम अब तू मेरे साथ है
तो फिर संभाल
ले 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 ले
के मैं चला
ले 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 जाना कहां
ला 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 ला। साथिया तूने क्या किया सहेलिया तूने क्या किया। करो ना मुझे प्यार इतना करो ना मुझे प्यार।
मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद दिल ये दुआ मांगे मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद दिल ये दुआ मांगे हो
दिल क्या दुआ मांगे हम राही दिल क्या दुआ मांगे
टूटे ना सांसों का बंधन हो ना
अपना रूप तुम लाना अपना प्यार मैं लाऊं, अपना रूप तुम लाना।
छाओ लेके मैं आऊं, नर्म धूप तुम लाना।
आरजू की राहों में, धड़कनों की बाहों में। अपना प्यार मैं लाऊं, अपना रूप तुम लाना।